मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 9 अक्टूबर 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों एकेडमी की जो फरवरी 2016 में क्लासेस होने वाली हैं उसके लिए 3 नौजवान साथियों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन 3 नौजवान साथियों के नाम हैं कृष्ण कुमार जो मुगल सराय उत्तर प्रदेश से हैं, सत्येंद्र कुमार आप प्रतापगढ़ आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और भूपेंद्र कुमार कोटा राजस्थान से हैं। तो कृष्ण कुमार सत्येंद्र और भूपेंद्र आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों अक्टूबर की क्लासेस तो बस अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली हैं, फरवरी की क्लासेस में कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन महीनों को भी बीतते वक्त नहीं लगता है दोस्तों। इसीलिए जो भी स्टूडेंट फरवरी में आ रहे हैं वो ये मानकर बिल्कुल न चलें कि अभी वक्त बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है उसी समय हम देखेंगे उसी समय करेंगे जो कुछ भी करना होगा। दोस्तों मेरी सलाह है कि चाहे आप अक्टूबर में आ रहे हों या फरवरी में आ रहे हों, आपकी सही मायने में एकेडमी के पैटर्न से तैयारी उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन से आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं जो रजिस्ट्रेशन करा करके क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं, और यहां तक कि वैसे तो जो भी मेरे प्रिय श्रोता हैं जिनको थोड़ा सा भी इस ऑडियो पर भरोसा है या उनको लगता है कि ये उनकी मदद कर सकता है, वो जिस दिन से ऑडियो सुनना शुरू करते हैं और जब जब सुनते हैं, मैं इसी विश्वास के साथ रोजाना ये ऑडियो पेश करता हूं मित्रों कि उनकी तैयारी में कुछ न कुछ ये मदद जरूर करेगी। तो दोस्तों आप सभी का सामूहिक रूप से हार्दिक रूप से स्वागत है। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं, एक सूचना भी है और सूचना ये है फ्रेंड्स कि मेरी जो हिंदी में पुस्तक आई है आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसको लगभग साल भर हो गया है और इस किताब को जितना बेतहाशा प्यार आप लोगों ने दिया है वह मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है और आश्चर्यजनक भी है। बहुत से स्टूडेंट्स को इससे फायदे हुए हैं और जो फीडबैक आप लोगों ने मुझे भेजा है उसके लिए मैं सच में आप लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसी समय से हम लोगों के दिमाग में ये बात थी कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अंग्रेजी माध्यम से तैयारी इसकी कर रहा है, हम लोगों ने उसी समय से अंग्रेजी में इसका अनुवाद शुरू कर दिया था। बहुत अच्छा अनुवाद हुआ है, कई कई बार उस अनुवाद को रिवाइज किया गया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी भाषा के नज़दीक पहुँच सके। और मित्रों आज आप सबको सूचित करते हुए मुझे बेहद आत्मसंतोष का अनुभव हो रहा है कि अंग्रेजी की यह किताब अब मार्केट में आ गई है। इस किताब का शीर्षक है हाउ टू बिकम एन आईएएस, हिंदी का ही अनुवाद है हाउ टू बिकम एन आईएएस। 400 पेज की यह किताब है जिसकी कीमत कम से कम रखने की कोशिश की गई है और इसकी कीमत है 250 रुपए। दोस्तों इस बीच में आप लोगों के बहुत से मेल आ रहे थे कि सर यह किताब कब आ रही है, हमें इसकी जरूरत है, तो मुझे ये बताते हुए डेफिनेटली बहुत आत्मसंतोष का अनुभव हो रहा है कि फ्रेंड्स वो किताब आ गई है, आप ये किताब मार्केट से ले सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो आप afeis.com पर आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी और ये किताब अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी होगी यदि अंग्रेजी के विद्यार्थियों के लिए भी ये किताब उपयोगी हो सकी तो। और सच मानिए तो आप आईएएस कैसे बनेंगे किताब को जो आप लोगों ने रिस्पांस दिया है उसी से प्रेरित होकर अब मैं कुछ आईएएस की तैयारी के अन्य जो टाइटल्स हो सकते हैं, जो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उन पर काम कर रहा हूं, जिसमें एक सब्जेक्ट डेफिनेटली हाउ टू डेवलप एनालिसिस पावर वाला विषय है। और मुझे भरोसा है कि ये लिखने का जो मेरा काम है लगभग 2-3 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा और इसको छप कर आने में हो सकता है कि 7-8 महीने लगे, ये किताब भी मार्केट में आ जाएगी। और जब वो आ जाएगी तो डेफिनेटली उसकी सूचना मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो फ्रेंड्स अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर जो लाइफ मैनेजमेंट का स्टेज है। दोस्तों हम पिछले 3-4 दिनों से लगभग दिमाग की मजबूती के बारे में बात कर रहे हैं या दिमाग के स्वरूप के बारे में, उसके डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत एक तरह से फिजिक्स में जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स का, उन्होंने जो बात कही कि कण जो होते न्यूट्रिनो जो होते हैं वो लगातार अपना रूप रंग बदलते रहते हैं, वो उसका आधार था। फ्रेंड्स, अब मैं चाहता हूं कि आज के इस लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से को मैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर आऊं, क्योंकि मित्रों सच पूछिए तो मैं जब मोटिवेशन की बात होती है तो मैं उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पाता, क्योंकि अगर मैं आपको उकसाऊं और बड़ी बड़ी बातें करूं कि आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, आप ब्रह्मा हैं और आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है, ये सब सुनने में तो अच्छी लगती हैं और काफी कुछ सीमा तक सही भी हैं, और थोड़ी देर के लिए आप डेफिनेटली बिल्कुल ऊर्जा से भर जाएंगे और अपने लिए एक बड़ा सा संकल्प भी ले लेंगे। लेकिन आप लोगों का ये अनुभव रहा होगा कि धीरे 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 कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे फिर वो संपर्क जो वो संकल्प है वो कमजोर पड़ने लगता है, और ढेर सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, स्थितियां बन जाती हैं, चाहे वो हमारे मस्तिष्क की हो चाहे बाहरी वातावरण की हो, कि हम रुकने से लगते हैं। तो दोस्तों, आप उससे पहचान सकें, रुकने से रुक सकें, इसके लिए क्या मैकेनिज्म हो सकता है? तो आपने महसूस किया होगा, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी गंभीरता से मेरी बातों पर गौर किया होगा, तो मैं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मैकेनिज्म की बात जरूर करना चाहता हूं कि इसका ये तरीका है, इसका ये उपाय है। तो पिछले 3-4 दिनों से मैं जिस परिवर्तन की बात कर रहा हूं, जिस फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं, बेहतर होगा कि इसको हम अपने अपने लेवल पर क्यों ना एक बार चेक करके देखें कि मैं जो कह रहा हूं वो सच भी है या केवल कहने के लिए ही कहा जा रहा है, या कुछ ही लोगों पर यह बात लागू होती है, सभी पर यह बात लागू नहीं होती, या कहने के लिए सुनने के लिए तो ये चीजें बेहतर लगती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, खुशनुमा लगती हैं, मनोरंजक भी लगती हैं, लेकिन सच्चाई इनमें उतनी नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे आज थोड़ी सी एक दो अलग तरीके की बातें करना चाहूंगा, और चूंकि इसमें प्रैक्टिकल जुड़ा हुआ है तो मैं चाहूंगा कि आप सब थोड़ा सा वक्त निकाल करके मेरी बातों को अपने अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखें, और यदि आपको उसमें कोई सच्चाई नजर आती है तो आप चाहें तो उसे आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर सच्चाई नजर नहीं आती है तो आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं, वो तो आपकी च्वाइस है ही। फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम कि अभी आप जो इस ऑडियो को सुन रहे हैं वो अपने घर में सुन रहे हैं, या अपना घर छोड़ करके शहर आ गए हैं, या छोटा शहर छोड़ करके कोई दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहर में पहुंच गए हैं, आई डोंट नो। लेकिन मैं केवल यहां पर आपको एक छोटा सा एक उदाहरण के तौर पर अपनी जिंदगी से कुछ हिस्से चुनने के लिए कह रहा हूं, वो ये कि अगर आप अपने घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहकर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या नौकरी कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, यहां तक कि मैं उस बहू के बारे में भी बात कर सकता हूं, जिसे आप कह लीजिए पत्नी के बारे में भी बात कर सकता हूं, जो शादी होकर पहली बार अपने ससुराल आई थी, वो भी अपने टुकड़े चुन सकती है। तो घर छोड़कर आप शहर में आए, या शहर का अपना घर छोड़कर महानगर में गए, तो कुछ समय के लिए बड़े शांत मन से तटस्थ होकर ध्यानपूर्वक आप केवल उस पहले दिन को याद करने की कोशिश कीजिए। मित्रों, शुरू में आपको लग सकता है कि यार अब तो वो भूल भाल गए होंगे, लेकिन दिमाग कि ये विशेषता होती है कि उसमें अगर कोई एक चीज डाल दी गई है तो वो कभी भूलता नहीं है, दिमाग में वो चीज मौजूद है, खो गई है, इधर उधर हो गई है, वहां से गायब नहीं हुई है, है वो वहीं। तो प्लीज आप घबराइए मत, याद नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती याद करने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर के संतुलन को बनाइए। जब आप याद करने की कोशिश करेंगे और कुछ चीजें याद नहीं आएंगी तो आपको थोड़ी सी एक बेचैनी सी होने लगेगी, दिमाग पर एक दबाव सा बनने लगेगा, आप झुंझलाने से लगेंगे, हो सकता है कि आपको अपने आप पर गुस्सा आए, और कोई ताज्जुब नहीं कि मुझ पर भी गुस्सा आने लगे कि सर ने क्या बवाल सौंप दिया, लेकिन इन सबको बर्दाश्त कीजिए, बर्दाश्त करने की ये क्षमता आपके दिमाग को मजबूत करेगी, और आप देखेंगे कि कैसे आपके दिमाग में वे घटनाएं उभर रही हैं, वे बातें उभर रही हैं, वे दृश्य उभर रहे हैं जिनके बारे में आपने अभी तक एक बार भी नहीं सोचा था। उनकी लिस्ट बनाइए और फिर
एक सूची बनाने के बाद उनका थोड़ा सा मूल्यांकन कीजिए, और मूल्यांकन इस आधार पर कीजिए कि उस पहले दिन जब आप अपने मायके को छोड़कर ससुराल आई, जब आप अपने घर को छोड़कर के शहर गए, या पहले दिन आप कॉलेज गए, या पहले दिन आपने सर्विस ज्वाइन की, कुछ भी ऐसी बात को ले लीजिए, या आपके सामने कोई संकट ही आया, तो आपकी सोच क्या थी? क्या आपको नहीं लग रहा था कि जिंदगी बर्बाद हो गई, अब जिंदगी कैसे कटेगी, मेरा तो सब कुछ छूट गया? और वहां मन नहीं लगता था, चाहे वो ससुराल हो, खुद के द्वारा चुना गया ससुराल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो शहर का दूसरा स्थान, कोई भी स्थान, आपको लगेगा कि कहां आ गए, जहां थे वहीं रहते यार, तो ज्यादा अच्छा था, जिंदगी तो कट ही जाती है, क्यों हमने अपने सिर पर बवाल ले लिया, आपको लगेगा। इसके बाद कुछ वक्त बीत चुका है, 6 महीने या साल भर का वक्त बीत चुका है, या 1 महीने का ही वक्त बीत चुका है, अब केवल आप इस आधार पर मूल्यांकन कीजिए और फिर से कुछ पॉइंट्स नोट कीजिए कि उस पहले दिन आपको जो कुछ भी लग रहा था, जैसा लग रहा था, क्या आज भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है? मूल्यांकन कीजिए और तटस्थता के साथ मूल्यांकन कीजिए, और थोड़ा सा रेशियो में कीजिए, अगर वक्त कम है तब तो थोड़ा सा रेशियो में कीजिए, जैसे अगर आपके सामने जो डिस्टेंस है, जो ड्यूरेशन है, केवल 1 महीने का है, तो थोड़ी सी सूक्ष्मता के साथ पकड़ना पड़ेगा, अभी भी खराब तो लग रहा है लेकिन उतना खराब नहीं लग रहा है, लेकिन अगर साल भर हो गया है, 2 साल हो गया है, तो आप देखेंगे कि अब चीजें उतनी खराब नहीं लग रही हैं, यानी कि चीजें बदल गई हैं, चीजें नहीं बदली हैं, याद रखिए आप बदल गए हैं, आपको इसको समझना पड़ेगा, शहर नहीं बदला है, ससुराल नहीं बदली है, नौकरी नहीं बदली है, कॉलेज नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है, और अगर उनमें बदलाव है भी तो इतना सूक्ष्म बदलाव है जो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, समुद्र में एक बूंद की तरह है, लेकिन आप बदल गए हैं, निश्चित रूप से आप बदल गए हैं, और जब आप बदल गए हैं तो जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, चाहे वो ससुराल है, आपकी नौकरी है, आपकी पढ़ाई है, आपका स्थान है, वो भी बदल गया है। इसका मतलब यह हुआ, 2 सिद्धांत इससे स्थापित होते हैं, पहली तो यह कि कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, याद रखिए कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, मैं बाहरी बदलाव की भी बात कर रहा हूं, वो भी स्थायी नहीं है, अगर आप उसको भी माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो साल भर पहले जो शहर जैसा था, अब वो शहर वैसा नहीं रह गया है, भोपाल आज से 10 साल पहले जो था, 5 साल पहले जो था, वो आज नहीं रह गया है, और ये बात भोपाल के साथ ही नहीं है, सारे शहरों के साथ है, सारे गांवों के साथ है, और इसी तरह से सारे व्यक्तियों के साथ है। आप भी 1 महीने पहले जो थे, 1 साल पहले जो थे, आज वही नहीं रह गए हैं। और जैसे ही दूसरा सिद्धांत आता है मित्रों, कि जैसे ही हम बदलते हैं, हमारे लिए उन सारी चीजों के मायने बदल जाते हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं, हमारे बदलते ही दूसरी चीजों के अर्थ बदल जाते हैं। वो शहर जो हमें बहुत बुरा लगता था, शाम होने के बाद काटने को दौड़ता था, अब उसी शहर में हम शाम होने की प्रतीक्षा करते हैं कि यार घूमने जाएंगे, मॉल में जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे, इतना अर्थ बदल जाता है। लेकिन शहर तो पहले भी था, मॉल पहले भी था, पिक्चर हॉल पहले भी थी, आप भी पहले भी थे, लेकिन जैसे ही आप बदले सारी चीजें बदल गईं। और यह संभव हुआ है मित्रों केवल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड की वजह से, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड जितनी ज्यादा होगी, माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उसमें वो बदलाव न केवल उतनी तेजी से ही होगा बल्कि उतने सकारात्मक ढंग से होगा, वो चीजों के साथ उतना ज्यादा तालमेल बैठा सकेगा। और मित्रों, आप सब जो सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मान करके चलिए कि जैसे या जिस दिन आप सिविल सर्विस में एंटर करेंगे, आपकी दुनिया बदल जाएगी, एकदम बदल जाएगी। ज्वाइनिंग के रजिस्टर पर, ज्वाइनिंग के पेपर पर हस्ताक्षर करते ही आप भारत सरकार के हिस्से हो जाएंगे और आपकी दुनिया बदल चुकी होगी। और अगर इस बदली हुई दुनिया के साथ आप तालमेल नहीं बैठा पाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहां सफलता मुश्किल हो जाएगी, जिंदगी दूभर हो जाएगी, मन खराब रहने लगेगा और लगेगा कि यार हमने क्या सोचकर तैयारी की थी, सफलता हासिल की और यहां तो क्या हो रहा है। फ्रेंड्स, कण कण बदल रहे हैं, हम भी बदल रहे हैं। याद रखिए, बदलते तो हम हैं, लेकिन अगर वो बदलना हमारा विजिलेंस तरीके से सतर्कता पूर्वक है तो वही बदलाव हमेशा हमारे पक्ष में होता है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस मैं इतनी ही बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। अब मैं आता हूं कल की AIR न्यूज की एनालिसिस के ऊपर। फ्रेंड्स, फर्स्ट न्यूज आज फिर आप आकाशवाणी की देखिए। परसों की जो फर्स्ट न्यूज थी वो प्रेसिडेंट के एक बुक रिलीज के समय दिए गए स्टेटमेंट को लेकर के थी कि हिंदुस्तान को सांप्रदायिक सद्भाव और सहिष्णुता की जरूरत है। शब्द कुछ भी होंगे, अर्थ लगभग लगभग यही है। आज भी जो कल जो पहली न्यूज आपने सुनी वो अब प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात कही है कि हमारे देश को सांप्रदायिक सद्भाव की जरूरत है। मित्रों, इस बीच में आपने और देखा, अगर आपने कल के चैनल्स पढ़े हो, आज की न्यूज सुनी हो, तो उसमें फिर से एक बात उभर करके आई है कि गुलाम अली साहब के जो प्रोग्राम हो रहे थे, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े गजल गायक हैं और हिंदुस्तान उन्हें बेतहाशा प्यार करता है, हम सब ने उनकी कितनी सारी गजलें सुन रखी हैं, बहुत सी याद भी हैं। उनके मुंबई और पुणे में प्रोग्राम उनके होने थे, जिसमें एक पर्टिकुलर पार्टी शिवसेना के विरोध के कारण वो कंसर्ट रद्द कर दिए गए, और इसके जवाब में फिर दिल्ली सरकार ने और आपके वेस्ट बंगाल की सरकार ने उन्हें अपने यहाँ कंसर्ट करने को आमंत्रित किया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि घटनाएं कुछ कुछ ऐसी घटती चली जा रही हैं कि इंप्रेशन दिमाग में ये बन रहा है कि जैसे हमारे देश में एक तरह से सांप्रदायिक तनाव का माहौल बनने लगा हो। हालांकि अगर हम थोड़े से और पीछे चले जाएं, तो मेरे सामने तो काफी लंबा दौर गुजरा है, आपके सामने थोड़ा सा छोटा दौर गुजरा है, इस तरह की घटनाएं और भी होती रहती, इससे पहले भी हुई है, चाहे सत्ता किसी भी पार्टी की हो, लेकिन अभी उसे कुछ विशेष रूप में लिया जा रहा है। और संकट थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है कि अभी लगातार घटनाएं एक पर्टिकुलर छोटे से टाइम फ्रेम में लगातार घट रही हैं, तो जब घटनाएं छोटे से टाइम फ्रेम में घटती हैं तो उसकी सघनता बढ़ जाती है और वो बहुत तेजी से फिर वो प्रभावित करता है, लोगों की चेतना को भी प्रभावित करता है, लोगों को चिंतित भी करता है। और अगर इसी तरह की घटनाएं छुटपुट तरीके से कभी कभार कहीं कहीं घट जाएं तो फिर वो हमारे लिए उतनी चिंता का कारण नहीं होती। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, इतने धर्म संस्कृति के लोग रह रहे हैं, इतने विचारों के लोग रह रहे हैं, इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, तो कुछ छुटपुट घटनाएं तो होती रहती है। लेकिन अभी निश्चित रूप से जो भी संवेदनशील लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो थोड़े से इन सारी बातों को लेकर के चिंतित हैं। तो मित्रों, ये एक मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपको अब सुपरफिशियल तरीके से नहीं बल्कि सही मायने में कंटेंट वाइज तैयारी करनी चाहिए। कंटेंट वाइज तैयारी करने का मतलब, कहने का मेरा मतलब है कि आपके पास तथ्य होने चाहिए, वास्तव में भारत क्या है। देखिए, इसकी तैयारी के लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री उसका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हिस्ट्री तो आपको पढ़नी ही है, और आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में हिस्ट्री के साथ ही साथ कला साहित्य और संस्कृति की भी बात कही जाती है, राइट? मतलब हिस्ट्री, हालांकि कला साहित्य और संस्कृति हिस्ट्री के ही हिस्से हैं, हिस्ट्री के अंदर ही आप इन्हें भी पढ़ते हैं, लेकिन उसका उल्लेख अलग से भी किया गया है। इसका मतलब है कि इस पर आपको थोड़ी सी अच्छी तैयारी करनी चाहिए। और वैसे भी मित्रों, बहुत सामान्य सी बात है, बहुत ही व्यावहारिक बात है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उसकी कला साहित्य संस्कृति, उसके पूरे के पूरे डेवलपमेंट, उसका जो विकास की जो उसकी प्रक्रिया रही है, उसके बारे में हमें जाननी चाहिए। और मैं आपको एक बात और भी बताऊंगा फ्रेंड्स, वो ये कि यदि आप राजनेता हैं और यदि आप प्रशासक हैं, दोनों में से कोई भी हैं या फिर दोनों ही हैं, तो यदि आपके पास इतिहास दृष्टि है, यदि आप हम अपने देश के इतिहास को जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा जो विजन होगा, हमारी जो दृष्टि होगी, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। और इसको केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से देशों के लीडर्स ने प्रूफ किया है। जैसे हमारे यहां ही लें तो हम जवाहरलाल नेहरू जी को ले सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और वो एक तरह से विश्व नेता के रूप में स्थापित हुए। तो उनके उनका जो विजन था, उन्होंने भारत में जो डेमोक्रेसी की फाउंडेशन रखी, जिस तरह से हिंदुस्तान को देखा समझा, तो वो देखना और समझना जो गहराई में होता है वो आता कहां से है। देखिए वही पेड़ बहुत ऊपर तक जा सकते हैं जिनकी जड़ें बहुत नीचे तक गई हुई हों, यानी कि जिसके पास इतिहास, इतिहास मतलब जमीन के नीचे अतीत जो बीत गया है, जो अपने अतीत को इतिहास को जितनी गहराई से जितने पीछे से देख सकेगा, स्वाभाविक है कि वो जमीन के ऊपर उतनी ही ऊंचाई तक जा सकेगा। नेहरू जी के साथ ये थी। आपको मालूम है कि नेहरू जी ने न केवल भारत का ही इतिहास लिखा है, केवल भारत एक खोज ही नहीं लिखी है उन्होंने, बल्कि ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी लिखी है, विश्व इतिहास की झलक भी उन्होंने लिखी है। यानी कि अपने देश से लेकर के विश्व के इतिहास तक की जानकारी उनके पास थी और इसी जानकारी ने उनके विजन को बहुत ब्रॉड बना दिया। तो फ्रेंड्स, केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि एक अच्छे प्रशासक बनने की दृष्टि से भी इतिहास और संस्कृति की जानकारी जरूरी होती है। और यदि आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं ये भी कहूंगा कि एक अच्छे जीवन और एक अच्छे नागरिक बनने के लिए भी इसकी बेहद जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, जब आप भारत की संस्कृति पर जाएंगे तो आपको बड़ी अद्भुत चीजें दिखाई देंगी। सच में जो हमारे देश की संस्कृति रही है वो बड़ी अद्भुत इस मायने में रही है कि ये शरण स्थल ही रही है। शुरू से आप देखेंगे तो लोग आते रहे मध्य एशिया से और फिर इधर शक हूण कुशाण, आप इतिहास उठा करके देखेंगे, और सबको भारत ने जगह दी। और सबसे बड़ी और अद्भुत बात यह है कि सब आए और यहीं समा गए, यहीं इसकी संस्कृति को स्वीकार कर लिया। ये भारत की विशेषता है जिसे हम सहिष्णुता का नाम देते हैं, सहनशीलता का नाम देते हैं, विविधता का नाम देते हैं, अनेकता में एकता का नाम देते हैं। मित्रों, मेरे पास अभी वक्त नहीं है और शायद वो बहुत यहाँ एप्रोप्रिएट भी नहीं होगा, नहीं तो मैं आप हमारी संस्कृति की जो भाषा है, जो रीति रिवाज हैं, चाहे वो धार्मिक ही क्यों ना हो, मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो हमारा धर्म है या ये जो हमारा सिद्धांत है या ये जो हमारा कर्मकांड है, यहां तक कि कर्मकांड ही क्यों ना हो, ये कहां से आया है, क्या हमारे यहां ओरिजिनल रूप में था, और अगर ओरिजिनल रूप में था तो ये किस रूप में था, कहां से आया और अब ये क्यों बदला और कैसे कैसे बदला, बड़े आराम से उनकी पहचान की जा सकती है। और मित्रों, जिस दिन हमारे अंदर इनकी पहचान करने की ताकत आ जाती है, उस दिन स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर सहनशीलता और सहिष्णुता के जबरदस्त गुण आ जाते हैं। तो मित्रों, मेरी सलाह है आप सबसे कि हमारे देश की जो संस्कृति रही है उस पर आप सब अभी थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें, ताकि आप अपने इसके उत्तर के लिए अगर प्रश्न पूछा जाता है तो, या इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो आप कंटेंट वाइज कह सकें, सुपरफिशियल नहीं कि हाँ हमारा इतिहास तो बड़ा सहिष्णु रहा है, संस्कृति सांस्कृतिक रहा है और दुनिया के लोग आते रहे हैं और हम उनको अपने यहाँ शरण दिया है, हमने हमारी मिली जुली संस्कृति है। नहीं, आप बताइए अगर आते रहे तो कौन कौन आए, कब आए, कैसे हमारी संस्कृति में वो मिले, हमारी संस्कृति के वो कौन से तत्व हैं जो हमने दूसरों से लेकर के अपने को एनरिच किया है, और यहां तक कि भारत की संस्कृति के ऐसे कौन से तत्व हैं जो दूसरे लोगों ने लेकर के अपने को उन्होंने एनरिच किया है, क्योंकि संस्कृति तो इसी तरह से आदान प्रदान करने वाली वस्तु है, देती है लेती है, देकर के दूसरों को समृद्ध करती है और लेकर के स्वयं को समृद्ध करती है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि इस पर आपकी एक अच्छी तैयारी होनी चाहिए। और एक ये सच पूछे तो एक सब्जेक्ट ऐसा है जो अभी के कंटेम्प्रेरी की दृष्टि से, समसामयिकता की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, अदरवाइज वैसे भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, राइट फ्रेंड्स। अब मैं आता हूं दूसरी खबर पर जो खासकर भारत और नेपाल को लेकर के थी। कल के अखबारों में, परसों के अखबारों में भी बल्कि एक छोटी सी खबर छपी थी कि नेपाल ने इस तरह की धमकी दी है, उसको ये लग रहा है कि नेपाल में आपने पढ़ा है ना कि अभी ट्रक एंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो नेपाल में फ्यूल की बहुत प्रॉब्लम हो गई है, सामान की बहुत समस्या होगी क्योंकि ट्रक अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं, नाकेबंदी सी हो गई है। जो आंदोलनकारी हैं, जो मधेशिया जो समूह है, वो अपनी जो मांग कर रहा है, जिसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, वो नेपाल के अभी वर्तमान के संविधान को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वो आंदोलन कर रहा है और उसके कारण नेपाल में सामान न पहुंचने के कारण वहां का जनजीवन बहुत दूभर हो गया है, चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। नेपाल को कुछ ऐसा लगा कि ये भारत जानबूझ कर रहा है और उसने परसों ये स्टेटमेंट दिया कि अगर भारत इस चीज को नहीं समझेगा तो नेपाल मजबूर हो जाएगा चाइना की तरफ झुकने के लिए। तो कल हमारे देश ने इसके खिलाफ एक प्रतिवाद करते हुए एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, भारत कोई नाकेबंदी नहीं कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो आंदोलनकारी कर रहे हैं, तो सरकार उनसे बात करे, और जहां तक चीन की तरफ झुकने का सवाल है तो ये किसी भी देश की अपनी नीति होती है, अपनी जरूरतें होती हैं, लेकिन इस बात को याद रखा जाना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि नेपाल के साथ जो रोटी बेटी का संबंध है वो सिर्फ भारत का ही है, दूसरे देशों का नहीं है। ये एक बहुत ही एक संवेदनशील बात कही गई है, और जिसके पीछे वही फिर जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे कि संस्कृति का लंबा इतिहास है, हमारे जो सांस्कृतिक उसके मेल जोल जो नेपाल के साथ रहा है उसका लंबा इतिहास है। और दोस्तों आप जानते हैं कि डेफिनेटली नेपाल और भारत के संबंध बहुत मायने रखते हैं, भारत के लिए भी मायने रखते हैं, नेपाल के लिए तो मायने रखते ही हैं। और आपको ये भी जानकारी होगी कि जैसे श्रीलंका के साथ हमारा जो संबंधों का जो प्रतिद्वंद्वी है श्रीलंका में वो चीन है, श्रीलंका या तो चीन की बहुत मदद लेगा या भारत की बहुत मदद लेगा, श्रीलंका से भी हमारे पुराने संबंध हैं। ठीक इसी तरह से नेपाल में भी है, नेपाल में भी भारत का जो प्रतिद्वंद्वी है या चाइना है, या भारत स्वयं है ही है, चाइना ही है। तो आपने अक्सर न्यूज में ये बात पढ़ी भी होगी कि चाइना पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो उनका प्रभाव है और वो अपना प्रभाव जमाना चाह रहे हैं, इस तरह की खबरें भी बीच बीच में आपको पढ़ने को मिलेंगी, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि चाइना का समर्थक ग्रुप है। तो मित्रों ये नेपाल की खबर थी। इसके बाद एक खबर थी नोबेल पुरस्कार, जो मैंने कल इसके बारे में चर्चा भी की थी कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, जो बेलारूस की कवित्री हैं स्वेतलाना, उनको ये दिया गया है। दोस्तों न्यूज में आपने एक शब्द सुना चेर्नोबिल, है ना, चेर्नोबिल की घटना मुझे ध्यान आ रहा है शायद ये 1980-85 के आसपास की है, जब हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे उसी के आसपास ही ये घटना घटी थी। चेर्नोबिल में असली में एक एटॉमिक एनर्जी का संयंत्र लगा हुआ है, एटॉमिक एनर्जी प्लांट है वहां, और किसी वजह से वहां विकिरण फैल गया था, रेडिएशन हो गया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उस रेडिएशन के कारण आसपास के बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी चेर्नोबिल की जो दुर्घटना, तो वो चेर्नोबिल शब्द इस्तेमाल किया गया क्योंकि उस घटना का की चर्चा करके अपनी कविताओं में और वहां के बाद चेर्नोबिल की घटना के बाद जो वहां जीवन की स्थितियां बनी उन अपनी कविताओं में उन्होंने स्थान दिया, जिसकी वजह से स्वेतलाना जी को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चेर्नोबिल क्या है, बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। दोस्तों तो AIR न्यूज के बारे में बस आज इतना ही, अब मैं आता हूं न्यूज पेपर्स पर। आज मैं दो इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। एक है बिजनेस स्टैंडर्ड का जो IIT शुल्क सुधार, IIT की फीस को बढ़ाए जाने के बारे में एक प्रस्ताव है, सरकार अब उस पर फैसला करेगी, उसको लेकर के ये एडिटोरियल कमेंट है। देखिए पिछले साल के पेपर में ये बात पूछा भी गया था कि जो हमारी इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनको कितनी किस लेवल तक की स्वायत्तता दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए, इस बात को लेकर के था। पिछले काफी समय से आप देख रहे हैं कि जब मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सब की बात होती है तो लगातार इस बात पर प्रश्न उठाया जा रहा है कि हमारा जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, वो क्या है। और यही कहा जाता है कि भारत का जो लेवल ऑफ एजुकेशन लेवल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो बहुत पुअर है, हम सब जानते हैं। तो अब इसको ठीक कैसे किया जाए, तो डेफिनेटली उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है और उसी का एक हिस्सा है कि फीस बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन क्या वो भारत जैसे देश के लिए ज्यादा मुफीद है, क्या वो संभव है, क्योंकि अगर उसकी फीस बढ़ा दी जाती है तो जो गरीब तबका है वो उसका फायदा फिर उस एजुकेशन का, स्टैंडर्ड एजुकेशन का फायदा नहीं उठा पाएगा। उसमें ठीक है कि कुछ वर्ग ऐसा है जो रिजर्वेशन वाला वर्ग है, उनको टोटल फीस का 10% देना पड़ता है, लेकिन बाकी वर्ग में भी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन रिजर्वेशन के उस ग्रुप में नहीं आते तो उनको पूरी फीस अगर देनी पड़ गई तो शायद उनके बच्चे न पढ़ पाए, तो ये एक एक सिचुएशन बनती है। इसमें इन्होंने जो बात सजेस्ट की है जिसको आपको स्पेशली नोट करनी चाहिए वो ये है कि जो वर्ल्ड की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जो संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या है कि वो बहुत से अपने प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कराती हैं और उस स्पॉन्सर के तहत उनका जो टोटल खर्च, जो पैसा जो आता है उनके पास, 60-80% उनको उस स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम से मिल जाता है। और भारत में जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम से मिलने वाली जो हिस्सेदारी है वो हार्डली 24% है। तो इसमें इन्होंने सजेस्ट किया है कि अगर आईआईटी अपने आप को इस तरह से, या इस तरह की जो संस्थाएं, इस तरह से मॉल्ड करें, इस तरह से परिवर्तित करें कि वो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ज्यादा मदद कर सकें, उनसे ज्यादा जुड़ सकें, तो ऐसी स्थिति में फिर प्रायोजक के तौर पर मिलने वाला जो पैसा होगा, प्रायोजित प्रोग्राम के जरिए मिलने वाला पैसा होगा, वो अधिक हो सकता है। और ऐसी स्थिति में फीस को आप थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। दूसरा इसमें इन्होंने जो पॉइंट दिया है, मैं समझता हूं भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब पहली जैसी स्थिति नहीं रह गई है। लगातार एजुकेशन लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगातार कम होते जा रहे हैं, तो जो शुल्क में वृद्धि की जो बात है उसे एजुकेशन की जो क्वालिटी है उससे भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। उसे सिर्फ एक तरफा कि बहुत से लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, उस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो इन्होंने ये दो पॉइंट रेज किए हैं, ये आप लोगों की जानकारी में होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एक आर्टिकल है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें इन्होंने खासकर हमारे मंत्रालय अभी किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको लेकर के चर्चा की है। मैंने इसमें अंडरलाइन इसको कर दिया है, आप देख लीजिएगा, इसको समझना बहुत आसान है। और खासकर जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के हैं ऑप्शनल के रूप में जो स्टूडेंट ले रहे हैं और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं, उनके लिए तो ये आर्टिकल मुझे लगता है कि काफी उपयोगी रहेगा। उन्हें इस आर्टिकल को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें, अभी जो सरकार जिस तरह से काम कर रही है और पिछले 10 सालों में जिस तरीके से वो काम करती रही है, एक रिफॉर्म करने के लिए, सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उन सब का एक छोटा सा आई बर्ड व्यू उनको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर्स के बारे में इतना ही। अब मैं आता हूं अपने अंतिम चरण पर, ईमेल का चरण है। मेरे पास एक मेल है वरुण कुमार पांडे का, जो इलाहाबाद से अभी अक्टूबर की क्लास में आ रहे हैं। उन्होंने अपना मोबाइल दिया, नंबर दिया है, जो भी स्टूडेंट उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहें वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9839544445। और मित्रों, अंत में सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेल लिखे हैं। विदिशा यादव का मेल है इलाहाबाद से। विदिशा, आपको बहुत बहुत स्पेशल थैंक्स इतना खूबसूरत, अच्छा, प्रभावशाली मेल लिखने के लिए। और इसी तरह का स्पेशल थैंक्स है पायल शर्मा के लिए गोरखपुर से। आप लोगों ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो बड़ी रिदमिक लैंग्वेज है और मैं समझता हूं कि ये लैंग्वेज खासकर आपको मेंस में अधिक नंबर दिलाने में डेफिनेटली आपकी मददगार सिद्ध होगी। और कुछ और मित्रों के नाम हैं, जिसमें है बी एस मीना जयपुर से, शिवम त्रिपाठी उरई उत्तर प्रदेश से, और रविंद्र सिंह नई दिल्ली से। मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं इजाजत चाहूंगा। आज शुक्रवार है, समझ गए होंगे आप। शनिवार को आपको नॉलेज सेंटर पर प्रेस की क्लिपिंग्स मिलेंगी, आपको योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स मिलेंगे, और जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं उनको उनका स्पेशल ऑडियो गाइडेंस मिलेगा। तो मित्रों, 2 दिन के लिए इजाजत चाहूँगा, सोमवार को फिर मुलाकात होगी। आप लोगों का ये वीकेंड बहुत सुखद हो, उपयोगी हो, और आप एक नई ऊर्जा इस बीच में संग्रहित कर सकें और सोमवार को फिर से नए उत्साह के साथ अपने नए सप्ताह के स्वागत के लिए उपस्थित हो सकें, इसी कामना और प्रार्थना के साथ अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।